ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيضاً گرامی، ہماری گفتگو سب سے بڑی عبادت، مخصوص ترین عبادت جسے اللہ جل شانہ نے اپنی طرف نسبت دیا، یعنی روزہ. اس کا فلسفہ کیا ہے؟ مقصد روزہ کیا ہے؟ روزے کا اصلی مقصد جو قرآن مجید نے بیان کیا وہ تقویٰ ہے، کہ تم پر روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم زیور تقویٰ سے آراستہ ہو سکو. اس اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسلام میں تقوی کی کتنی اہمیت ہے. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ کیا ہے تقویٰ؟ کل آپ کی خدمت میں چند آیتیں اور چند حدیثیں سلسلے میں پیش کر چکا ہوں. اہمیت تقویٰ اور مفہوم تقویٰ، کیا ہے تقویٰ، اسے جب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مولا تقویٰ کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہوا انہو لو وضع عملک علی طبق ولم یجعل علیہ غطاء. تقویٰ یہ ہے کہ اگر آپ کا عمل کسی سینی میں رکھ دیا جائے اور سینی کے اوپر کوئی غلاف نہ ہو، ڈھاکہ نہ جائے، کھلی سینی کھلی ہوئی ہو، عمل سب کی نگاہوں کے سامنے ہو. وقیف به علی اہل الدنیا لما کان فیہ شیء تستحی منہ، اور وہ آپ کا عمل پوری دنیا میں گھمایا جائے، سب کی نگاہوں کے سامنے سے آپ کا عمل گزارا جائے، تو اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو، کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ آپ کو شرمندگی کا احساس ہو سکے. اتنا صاف ستھرا اور اتنا پاکیزہ عمل ہو کہ اگر ساری دنیا بھی اسے دیکھ لے تو ہمیں شرمسار ہونے کی ضرورت نہ پڑے. اسے تقویٰ کہتے ہیں. ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ تقوی کی یہ تعریف تو عصمت کی سرحدوں تک پہنچا دیتی ہے، کیا معصوم کے سوا کوئی اور شخص ایسے کردار کا مالک ہو سکتا ہے کہ اس کے عمل میں کوئی ایک ایسا بھی عمل نہ ہو کہ اگر لوگوں کے سامنے وہ عمل آ جائے تو اسے شرمندہ ہونا پڑے؟ ہاں، کیوں نہیں، کیوں نہیں ہو سکتا، ممکن ہے. تو پھر معصوم اور غیر معصوم کا فرق کیا ہوا؟ معصوم بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم سب کے سب معصوم؟ نہیں. معصوم اور معصوم غیر معصوم کا فرق یہ ہے کہ معصوم میدان عمل میں بھی معصوم ہوتا ہے اور فکر و ذہن کے مرحلے میں بھی معصوم ہوتا ہے. معصوم نہ صرف یہ کہ عملاً کوئی گناہ نہیں کرتا، بلکہ معصوم کے ذہن و تصور میں بھی گناہ کی گنجائش نہیں ہوتی. یہاں گفتگو عمل کی ہو رہی ہے کہ عمل ایسا ہو کہ اس کے اندر کوئی خامی، کوئی کھوٹ، کوئی کمی نہ پائی جاتی ہو کہ اگر لوگوں کے سامنے وہ عمل آ جائے تو انسان کو شرمندہ ہونا پڑے. مولا کائناتی نے تقوی کے سلسلے میں نہج البلاغہ میں ایک مقام پر مولا بہت اچھی تشبیہ دیتے ہیں تقوی کو، گناہ کیا ہے اور تقویٰ کیا ہے. فرماتے ہیں کہ الا وان الخطایا خیل شمس. آگاہ ہو جاؤ کہ گناہ کی مثال، گناہ ایک ایسے घोड़े की मिसाल है कि मानंद है जो सरकश हो, अड़ियल हो, किसी के काबू में ना आता हो। हमला अलैहा अहलुहा, ऐसे सरकश घोड़े पर गुनहगार सवार हो। वखुलेअत लजमुहा, और उसकी लगाम भी सवार के हाथ में ना हो, लगाम भी ढीली हो। मालूम है कि अगर इंसान ऐसे घोड़े पर बैठ जाएगा, ऐसी सवारी पर बैठ जाएगा जो अड़ियल है, सरकश है, और उसकी लगाम भी हमारे हाथ में नहीं है, बेलगाम है, उसके दहन में लगाम भी नहीं लगी हुई है, तो मालूम है कि घोड़ा हमें कहीं भी गिरा सकता है, किसी जगह किसी खाई में पटक सकता है। इमाम फरमाते हैं कि गुनाह उस सरकश और अड़ियल घोड़े के मानंद है जिस पर उसका सवार बैठा हो और लगाम भी उसके हाथ में न हो, बेलगाम घोड़ा हो। तो नतीजा ये होगा, फतक़हमत बिहिम फिन्नार, कि ये गुनाह का घोड़ा उसे जहन्नम में फेंक देगा। लेकिन इसी के बरक्स तकवा क्या है, तकवे का नतीजा और असर क्या है? अला व इन्न तकवा मपाया जुलुलिन अलैहा अहलुहा वकुती अज़िमतुहा। लेकिन तकवा उस सधाए हुए घोड़े के मानंद है जिस पर उसका सवार बैठा हो और उसकी मेहार सवार के हाथ में हो। फ़औरदहुमुल जन्ना, ये तकवा उसे जन्नत तक पहुंचा देगा। तो बहरहाल तकवे की तारीफ और तकवे की अहमियत काफी हद तक वाजे हो गई। अब मसला यह है कि वो कसौटी क्या है जिसके जरिए हम परख सकते हैं कि ये तकवा हमारे अंदर पाया जाता है या नहीं। तकवे के जो माना, तकवे का जो मफहूम बयान किया, हम्माम अमीरुल मोमिनीन के पास यही पूछने आए थे, यही समझने आए थे, क्या यह हम्माम के अंदर तकवा पाया जाता है या तकवा नहीं पाया जाता है। चूंकि तकवे की अहमियत का अंदाजा था हम्माम को कि तकवा कितना अहम है, तकवे की इसी अहमियत के पेश नजर जब हम्माम ने मुत्तकीन की पहचान मौला से दरियाफ्त की और मौला के मुख्तसर से जवाब से वो मुतमईन नहीं हुए, तो मौला ने तफसीली जवाब का सिलसिला शुरू करते हुए पहले खुदा की हम्द सना की, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा और उसके बाद फरमाया, फ़इन्ना अल्लाह सुबहानहु व तआला खलकल खल्क हीना खलकहुम गनियन अन ताअतिहिम आमिनन मिन मअसियतिहिम لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه। हजरत ने असली बात कहने से पहले तमहीदी तौर पर यह याद दहानी कराई है कि यह ख्याल न करना कि मैं मुत्तकीन के जो सिफात बयान करने जा रहा हूं, अगर लोगों ने अपने को इन सिफात से आरास्ता कर लिया और मुत्तकी बन गए या इसके बजाय उन्होंने खुदा की नाफरमानी अख्तियार कर ली, गुनाह का रास्ता अपना लिया, अगर उन्होंने अपने को तकवे से आरास्ता कर लिया, तो इससे खुदा का कोई फायदा होगा ऐसा नहीं है। और अगर लोगों ने इन सिफात को अपनाने के बजाय गुनाह मासियत का रास्ता अख्तियार कर लिया, तो अल्लाह जल्ला शानों की जात अकदस में किसी किस्म का नुकसान न होगा, उसे किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचेगा। याद रखिए कि इस दुनिया की हर मखलूक, मिन जुमला हम और आप भी, अपने वजूद के लिए चार इल्लतों, चार चीजों के मोहताज हैं। अगर उनमें से कोई एक इल्लत भी कम हो जाए तो हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। वो चार इल्लतें क्या हैं? इल्लत फाइली, इल्लत मादी, इल्लत सूरी और इल्लते गाई। फर्ज कीजिए हम कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, उसके लिए एक बिल्डिंग बनाने वाले मेमार और मेसन की जरूरत है, ये इल्लते फाइली है। इसके लिए स्टील, लकड़ी, ईंट, सीमेंट वगैरह की जरूरत है, ये इल्लते मादी है। एक नक्शे और मैप की जरूरत है जिसके जरिए बिल्डिंग का ढांचा और उसकी शक्ल और सूरत का तायुन हो सके, ये इल्लते सूरी है। बिल्डिंग बनाने का मकसद क्या है? सुकूनत है, तिजारत है, या दीनी और सामाजिक एक्टिविटीज के लिए एक सेंटर बनाना है? ये जो मकसद है इसकी तामीर का, इसे इल्लते गाई कहते हैं। इल्लते गाई जहनी मरहलों में तमाम मरहलों पर मुकद्दम है। पहले जहन में मकसद मुअय्यन किया जाता है, उसके बाद बकिया असबाब फराहम किए जाते हैं, नक्शा बनाया जाता है, मेटेरियल लाया जाता है, मिशन और मजदूर बुलाए जाते हैं, और सबसे आखिर में जो चीज अमली शक्ल इख्तियार करती है वो भी इल्लत गाई है। तो जहन के मरहले में सबसे पहले इल्लत गाई है, और अमल के मैदान में सबसे आखिर में इल्लत गाई है। जब बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी तब उसमें सुकूनत इख्तियार की जाएगी, तब उसमें तजारत और कारोबार किया जाएगा, या तब उसमें दीनी और समाजी एक्टिविटीज अंजाम पाएंगी। ये चार इल्लतें हर मखलूक के लिए जरूरी हैं। हम कोई चीज बनाना चाहें उसमें चार चीजों का होना जरूरी है, लेकिन अल्लाह जल्ला शानो मखलूक नहीं है, वो वाजिबुल वजूद है, उसका वजूद जाती है। हम मखलूकात मोहताज हैं, वो गनी व बेनियास है। अंतुमुल फुकरा इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनीयुल हमीद, कुरान मजीद में है कि हम सब के सब अल्लाह के मोहताज हैं, लेकिन अल्लाह बेनियाज है, वो किसी का मोहताज नहीं है। हमारी खिलकत में भी ये चारों इल्लतें मौजूद, चारों इल्लतें मौजूद हैं। अल्लाह ने हमें जो पैदा किया है, हमारी तखलीक में भी ये चारों इल्लतें मौजूद हैं। इल्लत फाइली भी है, इल्लत मादी भी है, इल्लत सूरी भी है, इल्लत गाइब, इल्लत फाइली खुदा है। हमारा पैदा करने वाला, बनाने वाला खुदा है। इल्लत मादी वो गोश्त और पोस्त और हड्डी वगैरह है जिससे ये हमारा बदन तश्कील पाया है। इल्लत सूरी हमारी ये शक्ल सूरत है, और इल्लत गाई इर्तका और सैर इल्लाह है। सैर इल्लाह की तरफ इर्तकाई सफर, ये हमारे वजूद का मकसद है। क्योंकि देखिए, इंसान की खिलकत तमाम मखलूकात की खिलकत से जुदा है। इंसान के सवा जितने भी हैं सबको जैसे हैं वैसे ही अल्लाह ने उन्हें बना करके भेजा है। सोने को सोना अल्लाह ने बना दिया, कोयले को कोयला अल्लाह ने बना दिया, हीरे को हीरा अल्लाह ने बना दिया, शेर को शेर अल्लाह ने बना दिया, भेड़ को भेड़ अल्लाह ने बना दिया। भेड़ खुद से भेड़ नहीं बन गई, शेर खुद से शेर नहीं बन गया, सोना खुद से सोना नहीं बन गया, हीरा खुद से हीरा नहीं बना, कोयला खुद से कोयला नहीं बना है। इनका आयब या इनका कमाल, इसमें इनका अपना कोई हाथ नहीं है। ये कीमती हैं या कम कीमत हैं, इनके कीमती होने में इनका कमाल नहीं है, कम कीमत होने में इनका कसूर नहीं है। यानी जैसे अल्लाह ने बना के भेज दिया, लेकिन हम इंसान ऐसे नहीं हैं। हम इंसान की इंसानी शक्ल सूरत तो अल्लाह ने बना दी, लेकिन जो इंसान बनना है वो हमें खुद से बनना। इंसान जिसका दर्जो अशरफुल मखलूकात है, तमाम मखलूकात से अफजल है जो इंसान, उस इंसान को अल्लाह ने बना के नहीं भेजा है, बल्कि उसे खुद बनना है। अल्लाह ने बनने की सलाहियत दे दी और बनने के लिए नक्शा और रोडमैप दे दिया हमें, रोल मॉडल भी दे दिया, ये काम खुदा की तरफ से हो गया। अब उस नक्शे के मुताबिक, रोल मॉडल के मुताबिक हम अपने को बनाएं या ना बनाएं, ये हमारे अपने इख्तियार में है। अगर हमने बना लिया अपने को तो हम अशरफुल मखलूकात हो जाएंगे, फज़लनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलकना तफ़ज़ीला। और अगर हमने अपने को वैसा न बनाया तो उलाएका कल अनआम, हम जानवर जैसे हो जाएंगे, बल हुम अज़ल, जानवर से भी बदतर हो सकते हैं। हमारा दर्जा घटता भी है बढ़ता है, शेर का दर्जा ना घटता है ना बढ़ता है, भेड़ का दर्जा ना घटता है ना बढ़ता है, कोयले का दर्जा ना घटता है ना बढ़ता है, हीरे का दर्जा ना घटता है, वो है वो हीरा हमेशा हीरा रहेगा, कभी हीरा कोयला नहीं हो जाएगा, शेर हमेशा शेर रहेगा, शेर कभी बकरी नहीं हो जाएगा, बकरी हमेशा बकरी रहेगी, बकरी कभी तरक्की करके शेर नहीं बन सकती है, क्योंकि उसको अल्लाह ने बना के भेजा है, उसे खुद से नहीं बनना है। लेकिन इंसान में यह है, इंसान पस्ती की तरफ भी जा सकता है, बुलंदी की तरफ भी जा सकता है। तो हमें जो अल्लाह ने बना के भेजा है, इल्लत गाई हमारी क्या है, इर्तकाई सफर को तय करना। हम जब आए थे दुनिया में, लम यकुन शैया मस्कूरा, हमारी कोई हकीकत कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन हम वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक पहुंचने का मलाइका भी तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ने हमें वैसे ही बनने के लिए भेजा है, ये हमारी खिलकत की इल्लत गाई। ऐसा नहीं कि अल्लाह ने हमें बेमकसद पैदा किया है, इस कायनात में कोई चीज भी अल्लाह ने बेमकसद नहीं पैदा की है। कुरान मजीद में है, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुम ये गुमान करते हो कि हमने तुम्हें यूं ही अबस बेमकसद पैदा कर दिया है। या दूसरी आयत में है कि मा खलकना समाअ वल अर्ज़ा वमा बैनहुमा बातिला, जमीन व आसमान और जो कुछ जमीन व आसमान के बीच में है, हमने यूं ही अबस बेहुदा लागो बेमकसद नहीं पैदा किया है। वालिका ज़न्नु लज़ीना कफ़रू, ये तो काफिरों का गुमान है, ये नजरिया ये तसव्वुर काफिरों का तसव्वुर है, ये कायनात यूं ही पैदा हो गई, कोई इसका मकसद नहीं, कोई हदफ नहीं। जाहिर सी बात है, जब इल्लत गाई ना होगी तो इल्लत फाइली भी उनके ख्याल में नहीं होगी, ये काफिरों का ख्याल है। फवैलुन लिल्लज़ीना कफरू मिनन्नार, और काफिरों का ठिकाना जहन्नम के सिवा कुछ नहीं है। या इंसान की खिलकत के बारे में है कि मा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने जिन्न और इंस को इबादत के लिए पैदा किया। अब तर्ज कर चुका हूं कि इबादत का मकसद क्या है, तकवा है। हमारी खिलकत का मकसद इबादत, इबादत का मकसद तकवा, यानी अल्लाह ने हमें पैदा किया तकवे के लिए, और तकवा ही जरिया है सैर इल्लाह में कामयाब हो जाने का, जिसके जरिए से हमारा मकसद इल्लत गाई पूरा हो सकता है। लेकिन हमारी इल्लत गाई और अल्लाह की इल्लत गाई में फर्क है। हम अगर कोई काम करते हैं, हमारा भी हमारे काम में भी इल्लत गाई पाई जाती है, अल्लाह ने हमें पैदा किया उसके यहां पर किल्लत गाई है, हमारा भी एक मकसद होता है, अल्लाह का भी पैदा करने का मकसद है, लेकिन मकसदों में फर्क है, मकसद की कैफियत में फर्क है, माहियत में फर्क है। हमारा जो मकसद होता है, हमारी जो इल्लत गाई होती है, हमारे मकसद का मकसद खुद को फायदा पहुंचाना होता है, अपनी जरूरत पूरी करना होता है, अपनी एहतियाज को दूर करना होता है। लेकिन अल्लाह की इल्लत गाई, अल्लाह का मकसद अपने को फायदा पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमें फायदा पहुंचाना। अल्लाह ने हमें जिस मकसद के लिए पैदा किया, जो मकसद अल्लाह का हमारी खिलकत में है, मकसद ये नहीं कि अल्लाह हमें पैदा करके कुछ अपने लिए फायदा उठाना चाहता है, नहीं, वो हमें फायदा पहुंचाना चाहता है, हमारी जरूरतों को पूरा करना चाहता है। अगर अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा किया है, अगर उसने हम पर अपनी इबादत को फर्ज किया है, अगर उसने हमें इस्लामी तालीमात पर अमल करने की दावत दी है, अगर उसने हमें जेवर तकवा से आरास्ता होने का पैगाम दिया है, तो अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, हमें अशरफुल मखलूकात बनने में मदद पहुंचाने के लिए, हम उसकी तालीमात पर अमल करके, उसकी इबादत करके, जेवर तकवा से आरास्ता होकर उस पर एहसान नहीं करते, بلکہ یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا اور ان تعلیمات سے ہمیں آشنا کیا. اللہ جل شانہ قرآن مجید میں اپنے حبیب سے خطاب کر کے ارشاد فرماتا ہے، یمنون علیک ان اسلموا، اے میرے حبیب، یہ اسلام لا کر کے آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ ہمارا احسان ہے کہ مسلمان ہو گئے، ہمارا احسان ہے کہ ہم نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا. آپ ان سے کہہ دیجئے، قل، ان سے کہہ دیجئے، لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کا احسان مجھ پہ مت جتاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت کر دی. ہدایت کر کے اللہ نے اپنا مقصد نہیں پورا، اپنا فائدہ نہیں حاصل کیا ہے، تمہیں فائدہ پہنچایا ہے. ان کنتم صادقین، اگر تم واقعا سچے میں مومن و مسلمان ہو تو یہ تمہارے ایمان اسلام کا فائدہ تمہیں ہے، پروردگار کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے پروردگار کو نقصان نہیں پہنچایا بلکہ اپنا نقصان کیا ہے. جو زیور تقوی سے آراستہ نہ ہو سکے، جنہوں نے تقوی سے دوری اختیار کر لی، انہوں نے پروردگار کا کچھ نہیں بگاڑا ہے بلکہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ بیمار ڈاکٹر کے تجویز کردہ نسخے اور اس کی ہدایت پر عمل کر کے بیماری سے نجات پا کر ڈاکٹر سے اجرت کا مطالبہ کرے کہ ہم نے آپ کے نسخے اور ہدایات پر عمل کیا ہے، یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے آپ کے نسخے پر عمل کیا. خوب، اگر کوئی شخص یہ بات کہے ڈاکٹر سے تو لوگ اس کی عقل و خرد کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے؟ اللہ ہماری عبادتوں اور طاعتوں کا محتاج نہیں ہے، اس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ان من شیء الا عندنا خزائنہ، قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے خزانے میں موجود نہ ہو، وہ محتاج نہیں ہے. ڈاکٹر اگر فیس لیتا ہے، ڈاکٹر محتاج ہے، اس کے پاس کمی ہے، چاہے اس کے پاس اربوں خربوں کیوں نہ جمع ہو جائے، پھر بھی کمی تو ہے نا. مگر اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کا خزانہ بھرا ہوا ہے. جو گلاس بھرا ہوا ہے اس کے اندر مزید کچھ ڈالنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ فل ہے، بھرا ہوا ہے. ہر چیز کا خزانہ اللہ کے پاس موجود ہے. ایک حدیث قدسی حدیث ہے جسے حدیث قدسی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اس حدیث کو دیکھ کر بعض لوگوں کے ذہن میں یہ شبہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ، اللہ جل شانہ نے اپنی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ کائنات پیدا کی ہے. یعنی اس نے اگر ہمیں پیدا کیا ہے تو اس کا اپنا پرسنل ذاتی کوئی فائدہ تھا. حدیث کیا ہے؟ بڑی مشہور حدیث ہے، کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، تو مجھے شوق یا مجھے پسند یہ ہوا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق لکی اعرف، تو ہم نے اس لیے یہ مخلوقات کو پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں. تو یہاں پر بعض حضرات کہتے ہیں، دیکھیے حدیث صاف صاف کہہ رہی ہے کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، ہماری پیدائش میں اللہ کا فائدہ ہے، کیونکہ اللہ اپنے کو پہچانوانا چاہتا تھا. بس یہ کہنا کہ ہماری خلقت میں، ہماری عبادت میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ خود یہ حدیث جو مشہور، اگرچہ بڑی مشہور حدیث ہے، لیکن خود یہ حدیث معتبر نہیں ہے، اس کی سند ضعیف اور مرسل ہے. مرسل اسے کہا جاتا ہے کہ جہاں سلسلہ سند آخر تک نہ پہنچے. مثال کے طور پر میں یہ بیٹھا ہوا کہوں کہ امام جعفر صادق نے فرمایا، امام جعفر صادق نے ہم سے فرمایا، اس بات ہم نے کسی اور سے سنا ہوگا نا، انہوں نے کسی اور سے، انہوں نے کسی، یہ سلسلہ سند غائب ہے بیچ سے، ڈائریکٹ کہہ دیا گیا کہ جی اللہ نے فرمایا. اور کس سے فرمایا؟ اللہ نے. وہ سلسلہ سند تو ہم تک آنا چاہیے. اس روایت کو جو نقل کیا گیا ہے اس میں سلسلہ سند ہی نہیں ہے، مرسل اسی کو کہا جاتا ہے. یہ روایت مرسل ہے اور ضعیف ہے، قابل اعتبار نہیں ہے، یہ روایت معتبر نہیں ہے. अच्छा, अगर थोड़ी देर के लिए अगर हम मान भी लें कि यह रवायत मुतबर है, बिलफर्ज अव्वल तो मुतबर नहीं है, इसको हम सनद और दलील नहीं बना सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यह रवायत मुतबर रवायत है, इसमें क्या कहा? कहा गया कुन तो कंजन मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था, फअहबब तो अन औरफ, तो मैंने ये चाहा कि मैं पहचान लिया जाऊं, फखलकतुल खल्का लिकै औरफ, मैंने लोगों को पैदा किया, दुनिया को पैदा किया, कायनात को पैदा किया ताकि मैं पहचाना जाऊं। पहचान जाने के क्या होगा नतीजा? ये जो खजाना था वो लोगों के सामने आ जाएगा, लोगों को मिल जाएगा। मुझे ये बताइए, अगर किसी को या कुछ लोगों को कोई खजाना मिल जाए, इसमें खजाने का फायदा है या खजाना पाने वालों का फायदा है? खुद खजाने का तो फायदा नहीं ना है, खजाना जिन्हें मिला है उनका फायदा है, न कि खुद खजाने का फायदा। परवरदगार कहता मैं खजाना तो छुपा हुआ खदों की निगाहों से नहा था, मैंने चाहा कि लोग इस खजाने को पहचान लें, यानी लोगों को यह खजाना मिल जाए। अगर खजाना मिल जाए तो अल्लाह का फायदा है या जिन्हें यह खजाना मिलेगा उनका फायदा है, क्योंकि अब तक अल्लाह की शनाख्त होगी नहीं, लोगों तक यह खजाना पहुंचेगा नहीं। अगर अल्लाह ने मखलूकात को खल्क किया ताकि मखलूकात इस खजाने तक उनकी रसाई हो जाए, ये खजाने से वो मालामाल हो जाए, तो खजाना मिलने वाले का फायदा या खजाना या खजाने का फायदा? अल्लाह तो खजाना है, तो अल्लाह का फायदा नहीं, यहां भी नहीं है। फायदा किसका है? जो लोग खजाने को जिन्होंने पहचान लिया, जिन्हें अल्लाह की मारिफत हो गई, जिन्हें अल्लाह का इरफान हासिल हो गया, तो खजाना पाने वालों को मारिफत, अल्लाह की मारिफत हासिल करने वालों का फायदा है, जिन्हें मारिफत हासिल हो गई उनका फायदा है, अल्लाह का फायदा नहीं है। जिसने अपने छुपे हुए खजाने को, जो अल्लाह अपने छुपे हुए खजाने को पहचानवा रहा है, उसका फायदा नहीं है, जो पहचानेंगे उनका फायदा है। फायदा उन लोगों का है जिन्होंने उसे पहचान दिया। ऐ काश हमारा शुमार भी उन्हीं लोगों में हो जाता जिन्होंने खुदा को पहचान लिया है, जिन जो खुदा की जिनको मारफत हासिल हो चुकी है। तो मौलाए कायनात मुत्तकीन की सिफात बयान करने से पहले ये बात समझा देना चाहते हैं कि जो सिफात हम बयान कर रहे हैं, इन्हें अगर हमने अपना लिया तो इसमें अल्लाह का कोई फायदा नहीं है, नहीं अपनाया तो अल्लाह का नुकसान नहीं है, अपना लिया तो हमारा फायदा, ठुकरा दिया तो हमारा नुकसान है। चुनांचे फरमाते हैं فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ, अल्लाह ने मखलूकात को पैदा किया, हीना खलकहुम गनियन अन तआतिहिम आमिना मिन मासियतिहिम, जिस वक्त अल्लाह ने इन्हें पैदा किया वो इनकी इताअत से बेनियाज था और इनकी नाफरमानी के नुकसान से महफूज। लअन्नहु ला तज़ुर्रहु मासियत मन असाह वला तन्फ़अहु ताअत मन अताह, क्योंकि जो इसकी नाफरमानी करे, नाफरमानी करने वालों की नाफरमानी अल्लाह को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, और इताअत करने वालों की इताअत अल्लाह को फायदा नहीं पहुंचा सकती है। खुदावंद मुताल से दुआ है कि अल्लाह हमें इन 110 सिफात को समझने और इन सिफात से आरास्ता होने की तौफीक इनायत फरमाए, ताकि हम भी उस खजाने तक पहुंच सकें जिससे कीमती खजाना दुनिया में मौजूद नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आप तमाम हजरात से दरख्वास्त है एक सूरह फातिहा की, बराए मरहूमीन जाफरी बेगम, सैयद सित्तर रिज़वी, मोहम्मद हैदर, ताहिरा औसत, बद्रुन्निसा बेगम, ज़िल हसनैन काजमी और दिलनास काजमी मरहूमिन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد.